तारापरी ने उस गांव में कदम रखा था, तभी एक हल्की सी आंधी आई। तारापरी को लगा मानो वहां की हवाओं ने उसका स्वागत किया हो। अमन और तारापरी साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही दूरी पर जाने पर उन्हें गांव खाली खाली सा लगा। तारापरी और अमन अपने चारों ओर देख रहे थे, तभी मान झुंझलाकर बोला, ये सब क्या है मॉम, आप इस खाली गांव में हमें क्यों लाई हैं? करिश्मा जी तारापरी को बड़े ध्यान से देख रही थीं। वे ये जांच करना चाहती थीं कि क्या वाकई तारापरी इस गांव को और पर्ची पर लिखे पते को जानती है या नहीं, और अगर तारा उस पते को नहीं जानती तो वो उसके हाथ में क्यों था। करिश्मा जी अपने आप से सवाल जवाब कर रही थीं। मान के सवाल पूछने पर वे फिर से झुंझला उठीं। मान, तुझे क्या हो गया है? तू इतना बेसब्र क्यों होता जा रहा है? क्या तुझमें थोड़ा सा भी धीरज नहीं है? तब मान गुस्से से चुप हो गया और अपनी माँ को घूरने लगा। वे चारों एक गली में मुड़े, तभी वहां उन्हें 12-13 साल का एक बच्चा दिखाई दिया। उन्होंने उस खेलते हुए बच्चे को रोका और कहा, हे बच्चे, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये पता कहाँ पर है? बच्चे ने बारी बारी से सबकी ओर देखा और बोला, हम नहीं जानते, यूँ किसका पता है? मान ने कहा, मॉम इस बच्चे को छोड़ो, हम लोग किसी और से पूछ लेते हैं। तब वो बच्चा मान को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, कोई नहीं मिलेगा यहाँ, पूरा का पूरा गांव खाली है। ये सुनकर वे चारों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब अमन ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटे, क्या तुम बता सकते हो सब गांव वाले कहाँ गए हुए हैं? तब वो लड़का बोला, वो आज सब ठकुराइन अम्मा के घर पर गए हुए हैं, वहाँ आज बहुत बड़ी दावत है। ये सुनकर अमन और तारापरी चौंक गए, लेकिन करिश्मा जी ने कहा, सो बेटा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उन ठकुराइन अम्मा का घर कहाँ पर है? तब वो बच्चा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो। करिश्मा जी ने हाँ में सिर हिलाया। वे चारों उस बच्चे के पीछे उस ओर चल दिए जहाँ ठकुराइन अम्मा का घर था। मान चलते हुए बार बार तारापरी को देख रहा था, क्योंकि तारापरी ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। वो अपना पूरा ध्यान अमन पर दे रही थी। यही बात मान को जल भुनकर राख बना रही थी। जल्दी ही वे लोग एक बड़े से घर के आगे खड़े हुए थे। वे सब ये देखकर चौंक गए कि उस घर के बड़े से गार्डन साइड एरिया में कितने सारे औरत मर्द एक साथ सफ़ेद कपड़ों में खड़े हुए थे। उन सबके मुंह दूसरी ओर थे, जिसकी वजह से वे अमन, तारापरी, करिश्मा जी और मान को नहीं देख पा रहे थे। तब करिश्मा जी ने तारापरी से कहा, बेटा, क्या तुम जानती हो इन सबको? करिश्मा जी के सवाल पर तारापरी करिश्मा जी की ओर देखने लगी। तारापरी ने बात बदलते हुए कहा, वो मॉम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सब कुछ काफ़ी अलग और अजीब सा लग रहा है। ऐसा कहकर तारापरी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया, ये दिखाने के लिए मानो वो कितना सोच रही हो। ये देखकर करिश्मा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम ज़्यादा मत सोचो, ओके? अभी हम लोग अंदर जाते हैं, आई एम श्योर हमें यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहकर करिश्मा जी आगे बढ़ने लगी। वे चारों करिश्मा जी, मान, अमन और तारापरी पीछे थे, और उनके सामने ढेर सारे आदमी, औरतें, बच्चे प्योर वाइट कलर के कपड़े पहने खड़े थे। उन्हें पीछे से देखने में कुछ ऐसा लग रहा था मानो वे लोग कुछ पूजा अर्चना कर रहे हों। धीरे धीरे लोगों की भीड़ में वे सब पहुंच गए। तभी एक औरत जो आंखें बंद करके कुछ मन ही मन पढ़ रही थी, उसके कंधे पर करिश्मा जी ने हाथ रखा। करिश्मा जी के हाथ रखते ही उसने झटके से अपनी आंखें खोली और करिश्मा जी को ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया और बोली, तुम कौन हो और पूजा में सफ़ेद कपड़े पहनकर क्यों नहीं आई? करिश्मा जी उस औरत की बात सुनकर थोड़ी सकपका गईं और अपने कपड़े देखने लगीं। करिश्मा जी ने एक स्टाइलिश साड़ी पहन रखी थी जिस पर हल्का हल्का वर्क था, जिसमें करिश्मा जी बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। तारापरी, जो उस औरत के पीछे खड़ी थी, उसे उस औरत की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी, और जब उस औरत ने उसे कपड़ों को लेकर टोका तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तारापरी को तो कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसने नन्नू चिन का दिया हुआ सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। उसे इस बात को लेकर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई उसे सफ़ेद कपड़ों को लेकर टोकेगा। तभी करिश्मा जी ने तारापरी की ओर इशारा करते हुए उस औरत से कहा, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो लड़की आपके पीछे खड़ी है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? करिश्मा जी के तारापरी की ओर इशारा करने पर उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा, और तारापरी को देखते ही उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए और वो अचानक अपनी आवाज़ में कुछ बोलने लगी कि सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर कुछ पढ़ते पढ़ते एकदम शांत हो गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। जैसे जैसे वे लोग पीछे मुड़कर तारापरी को देख रहे थे, वैसे वैसे उन सबकी आँखें हैरत के मारे फटी जा रही थीं, और जिस जिसकी नज़र तारापरी पर पड़ती वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता था। तारापरी, अमन और मान ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी आवाज में कुछ कहते हुए एकदम से साइड होते जा रहे थे और सबके सब अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थे, मानो वे लोग कितने बड़े शौक में हों। और जैसे ही वे सब लोग एक तरफ हट गए, तब उस बड़े से घर के दरवाजे पर बीचों बीच एक बड़ा सा चित्र रखा हुआ था, जिसे देखकर अमन, करिश्मा जी और मान समेत तारापरी का हैरानी के मारे बुरा हाल था, क्योंकि वो चित्र किसी और का नहीं बल्कि तारापरी का ही था। और उस चित्र के सबसे आगे एक औरत बैठी हुई थी, और जैसे ही उसने शोर शराबा सुना वो भी पीछे मुड़ी, और जैसे ही तारापरी ने उस औरत को देखा उसके होश उड़ गए और वो बिना किसी की परवाह किए भागकर उस औरत के गले लग गई और रोने लगी। वो औरत भी तारापरी के गले से लगाकर बेहद खुश थी और उसकी आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो गए थे। करिश्मा जी, अमन और मान आंखें फाड़कर ये दृश्य देख रहे थे। वो औरत कोई और नहीं बल्कि तारापरी की माँ रानी परी थी, जिन्होंने करिश्मा जी का शक दूर करने के लिए एक गांव की औरत होने का वेश धारण किया था। और इतना ही नहीं, उस वक्त जितने भी लोग वहां मौजूद थे वे सब के सब मायावी थे। और जैसे ही तारापरी अपनी माँ से मिलकर अलग हुई, उसे एहसास हो गया कि वो परीलोक में नहीं है बल्कि राधा मोहन के गाँव में है। लेकिन तारापरी ये बात नहीं समझ पा रही थी कि मोहन की आत्मा ने ये सब कुछ कैसे और कब किया, और ये पूरा का पूरा गाँव तारापरी को कैसे जानता है। तारापरी के मन में रह रहकर सवाल उठ रहे थे। तभी रानी माँ मन ही मन तारापरी से बातें करने लगी। तारा बेटी, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगी। तब तारापरी मन ही मन सोचती है, लेकिन रानी माँ, आप यहाँ एक मामूली सी इंसान बनकर एक ठकुराइन के रूप में यहाँ कैसे आई? रानी माँ, आप मुझे अभी सब कुछ बताइए, वरना सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और इससे पहले कि रानी माँ कुछ कहती, करिश्मा जी ने दोनों गले से लगी हुई माँ बेटी को अलग किया और बोली, ये सब क्या है? आपने तारा बेटी का चित्र इस तरह से यहाँ क्यों रख रखा है? तब ठकुराइन जी करिश्मा जी को देखते हुए बोली, आप कौन है? तब इससे पहले कि कोई कुछ कहता, दो लड़कियां भागते हुए अंदर से वहां आ गईं और आते ही तारापरी के गले से लग गईं।
वो दोनों कोई और नहीं बल्कि तारापरी की परीलोक की सहेलियां सोनल परी और मीनल परी थीं, जो एक नॉर्मल गांव की ही लैकी के वेश में थीं। तारापरी उन दोनों को देखकर खुशी के मारे झूम उठी। अमन तो बस तारा को खुश देखकर ही खुश होते जा रहा था, लेकिन मान के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। वो सभी गांव वाले एक एक करके तारापरी के सर पर हाथ रखकर वहां से जाने लगे, और जल्दी ही वो महल जैसा घर खाली होने लगा, और धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। और अब वहां तारापरी की माँ रानी माँ और उसकी दो सहेलियां सोनल परी और मीनल परी के अलावा करिश्मा जी और वे दोनों भाई अमन और मान रह गए थे। तब रानी माँ, जो कि एक ठकुराइन के रूप में थी, उन्होंने एक रौबदार वाली आवाज में कहा, आप सब कौन हैं और हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? ठकुराइन की बात सुनकर करिश्मा जी के साथ साथ अमन और मान भी एक दूसरे को देखने लगे। तब करिश्मा जी आगे बढ़ीं और बोली, हम लोग वो हैं जो आपकी बेटी को लेकर आए हैं। शायद आपको पता नहीं, पिछले 6 महीने से आपकी बेटी हमारे साथ रह रही है, और जब जब हमने इसके घर परिवार वालों के बारे में पूछा, इसने तब तब हमें इतना ही कहा कि ये कुछ नहीं जानती, और इसने हमें बताया कि ये एक अनाथ है। और फिर जब मैंने इसे इसके परिवार वालों के बारे में कड़ी पूछताछ की, तब जाकर उसने हमें यहाँ का पता दिया, और हम तुरंत ही इसे लेकर यहाँ चले आए। तब ठकुराइन जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, आप लोग अंदर आइए। ये सुनकर करिश्मा जी ने राहत की सांस ली और अमन और मान को अंदर आने का इशारा करते हुए तारापरी को लेकर अंदर चली गईं।